अभी चलते हैं अगले मसले पे। मसला नंबर 40, दुआ सिर्फ अल्लाह ताला ही से बराह रास्त मांगनी चाहिए। इसकी दलील आयत सूरत बकरा 186, व इसा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई सादान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ए नबी, मेरे बंदे जब तुमसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो इनको बता दो कि मैं तुमसे करीब हूँ। जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं कबूल करता हूँ। बस इन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लाएं ताकि राह रास्त पा लें। इसकी रिवायत दलील एक हदीस से, तिर्मिज़ी की रिवायत है नोमान बिन बशीर से, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से ये बात सुनी कि दुआ इबादत है। ये जो बात है ना कि हम कहते हैं दुआ करने से क्या होता है, नहीं, दुआ इबादत है। तो इबादत तो अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं है, तो फिर दुआ हम किसी और से कैसे कर सकते हैं। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई कि तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, मैं इन्हें जल्द ही रुसवा करके जहन्नुम में दाखिल करूंगा। मसला नंबर 41, 41, पनाह सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए। इसकी दलील कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिन अल जिन्नति वन नास। कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद की इस वसवसा डालने वाले के शर से, जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाब वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। और हदीस, अब देख रहे हैं कि हर मसले की तस्दीक में एक कुरान की, कुरान पाक की एक आयत और एक हदीस बयान की जा रही है। हालांकि अगर आप कुरान पाक को खोलें और तरतीब से ज़रा आयतों को अलग करें, सिर्फ़ एक एक मसले पे आपको 20 आयतें मिलेंगी, बाज़ मसलों पे आपको 50-50 आयतें भी मिलेंगी। और जब मैंने कुरान पाक को इस फॉर्म में करके देखा, मुझे लगा कि कुरान पाक का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा हमें तौहीद सिखाने आया है, जिस पे हम इतनी बात नहीं करते। हम दीन भी शुरू करेंगे ना तो पर्दे से शुरू करेंगे, हम दीन भी शुरू करेंगे ना तो हम खाने पीने की किसी आदत से शुरू करेंगे। हम रफुल यदैन से दीन शुरू करते हैं, हम ऊंची नमाज और नीची नमाज से दीन शुरू करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि दीन तौहीद से शुरू होता है। अल्लाह ताला हमारी तौहीद को पुख्ता कर दे। तो हदीस क्या है, खौला बिनते हकीम से कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी जगह ठहरे और ये दुआ पढ़े, क्या आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलेमात के ज़रिए सारी मखलूकात के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, तो उसे उस जगह से रवाना होने तक कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। सफ़र में जब होते हैं, कहीं रुकते हैं, गाड़ी पे उतरे, जैसे आप यहाँ से कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, अब रास्ते में आप पिकनिक एरिया में उतरते हैं, थोड़ी देर स्टॉप कर लें, लेकिन कोई पता नहीं वहाँ से कोई सांप निकल आए, जंगल है, कोई बिच्छू निकल आए, तो ये दुआ पढ़ लिया करें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, तो फरमाया कि फिर कोई चीज़ इंसान को तकलीफ़ नहीं देगी। तो इसमें हमने देखा कि हमने अल्लाह के नाम से पनाह पकड़ी कि अल्लाह की पनाह में बाकी चीज़ों को दिया। फिर अगली बात, मसला नंबर 42, तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अल्लाह ही पर करना चाहिए। यानी किसी दूसरे पे तवक्कुल करना भी जो है ना, ये भी शिर्क हो जाता है। इसकी दलील सूरत आल इमरान की आयत 160, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम वा इन यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही वा अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। बस सच्चे मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। और इसकी दलील में हदीस, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अगर तुम लोग अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क दे जैसे परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है। हालांकि परिंदों की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई स्टोर नहीं है उनका, उनकी कोई जॉब नहीं, लेकिन खाली पेट निकलते हैं, खुद भी खाते हैं और बच्चों के लिए चोंच में दाना लेके आते हैं। आज हमारा तवक्कुल किस पे है? हाय, जॉब चली गई, इकोनॉमी ड्रॉप हो गई, यानी ये छोटे छोटे शिर्क हैं। आप अगर रिलाई करते हैं ना किसी चीज़ पे, तो वो भी आपके तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। किसी इंसान पे तवक्कुल करते हैं, नहीं देखना ये मेरी मदद करेगा, शौहर चला गया दुनिया से, हाय अब बच्चे कहाँ से खाएंगे। नहीं देखिए, ये झूठे सहारे हैं, ये छोटी छोटी मोहरे हैं जो अल्लाह ने दुनिया में रख दी, असल ज़ात उसकी है। लिहाजा अपने ईमान को पुख्ता करने की ज़रूरत है कि मेरा रब जो कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मसला नंबर 43, रज़ा और खुशनूदी सिर्फ़ अल्लाह ही की तलब करनी चाहिए। इसकी दलील आयत नंबर 38 सूरत रूम, फ़ाति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरु लिल्लज़ीन युरीदून वजहहु युरीदून वजह अल्लाह वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक अदा करो, यही तर्ज अमल बेहतर है इन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और हदीस है हज़रत माविया से, हज़रत माविया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, और ये तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स लोगों की नाराज़गी मोल लेकर अल्लाह की रज़ा तलब करता है, तो अल्लाह ताला इसे लोगों से गनी कर देता है। यानी अल्लाह को राज़ी करना है, लोग नाराज़ होते हैं तो हो जाए, और जो शख्स अल्लाह की रज़ा जोई हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेता है, तो अल्लाह ताला उसे लोगों के सुपुर्द कर देता है। हम तो नहीं ऐसे, हाय लोग क्या कहेंगे। जिस बंदे ने ये खौफ खा लिया ना कि लोग बातें करेंगे, लोगों की बातों के डर से फलां काम कर लो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं इसको लोगों के जिम्मे डाल दूंगा। अब वो डरता ही रहेगा बेचारा। इसीलिए देखिए, ऐसी तबीयत के हामिल लोग अक्सर जहनी मरीज बन जाते हैं, वो डरते और खौफ खाते रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह से डरता है, भाई मैंने रब को नाराज़ नहीं करना, तो अल्लाह ताला उससे फिर राज़ी भी होता है। फिर आप देखिए कितनी बारीकी है ना तौहीद में। अगला मसला पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मसला नंबर 44, 44, तमाम मोहब्बतों पर गालिब अल्लाह ही की मोहब्बत होनी चाहिए। यानी ये भी शिर्क हो जाएगा कि हम अल्लाह से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करें। दलील क्या है? सूरत बकरा आयत 165, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, और इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी चाहिए। हालांकि ईमान वाले तो अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करते हैं। और हदीस बड़ी खूबसूरत है इस मफहूम की तस्दीक में। सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अनस से, आपने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन खसलतें होंगी, वो इनकी वजह से ईमान की हकीकी हलावत और मिठास महसूस करेगा। आपको आती है ईमान की मिठास? ईमान बड़ी मीठी चीज़ है, इंसान के टेस्ट को मीठा कर देता है, और ये वो चीज़ है कि जो इंसान को दुनिया के गमों में भी गम नहीं आने देती और मुश्किलों में मुश्किल में नहीं आने देती। तीन चीज़ें हैं जिसने अपने अंदर पैदा कर ली, उसको ईमान की मिठास मिल जाएगी, अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। वो कौन सी चीज़ है? पहली चीज़, अल्लाह और उसके रसूल से बाकी तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। ये कैसे होती है? कैसे पता चले? बस देख लीजिए, एक तरफ अल्लाह का हुक्म आ रहा है और दूसरी तरफ हमारे घर वालों का कोई हुक्म है, एक तरफ अल्लाह का हुक्म है दूसरी तरफ बच्चों का कोई मुतालबा है, शौहर की बात है, मैं किसकी मानती हूँ। ज़िंदगी में कई मुकामात ऐसे आते हैं कि हम इस दोराहे पे खड़े होते हैं, एक दफ़ा घर में से किसी को खुश करना है और दूसरी तरफ अल्लाह को खुश करना है, हम किसको खुश करते हैं? मुझे तो लगता है अमूमन अल्लाह ताला को पीछे डाल देते हैं, इनको घर खुश कर लो अल्लाह की खैर है, वो तो कर लेगा खुश। नहीं, ईमान का तकाजा क्या है? कि अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज़्यादा हम उसको राज़ी रखें। दूसरी क्या है? किसी आदमी से अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना, इन्नी उहिब्बु की फिल्ला, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, ये भी बंदे को ईमान देता है। और तीसरी चीज़ ये है कि कुफर जिससे अल्लाह ने उसे बचाया है उसकी तरफ पलटना उसे इतना ही नापसंद हो जितना आग में दाखिल होना। यानी इंसान एक बुरी आदत छोड़ दे शऊर के साथ, फिर दोबारा उसी में लग जाना। हम सोचे ज़रा, कभी ऐसा हुआ कि हमने जोश में आके कोई नेकी शुरू की, फिर थोड़े दिन बाद होश आया तो छोड़ दी। कहा कि ईमान वाले को तो ये बात इतनी बुरी लगती है कि जैसे कोई उसको आग में डाल दे। आग में डलना उसको पसंद है, लेकिन एक नेकी को का शुरू करके छोड़ना उसको पसंदीदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें इन तीनों चीज़ों का हामिल कर दे। फिर आप देखिए कि एक और किस्म जो शिर्क की बनती है वो कहर डर। अगला मसला है 45। हर किस्म के डर और खौफ पर अल्लाह ही का खौफ और डर गालिब होना चाहिए। दलील है सूरह तौबा की आयत 13-13। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अतख्शौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहु इन कुंतुम मुमिनीन। क्या तुम काफिरों से डरते हो, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो। डर है हमारे दिल में किसी और का? ससुराल का डर तो नहीं है, बच्चों के ससुराल का तो नहीं है? पहले अपने ससुराल से डरते हैं, फिर बच्चों के ससुराल से डरते हैं। छोटी छोटी बातों पे डरते हैं, और फिर उस डर की वजह से जब गलत काम कर लेते हैं तो सोचिए अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। मसला नंबर 46-46। दीन और दुनिया के तमाम मामलात में इताअत सिर्फ अल्लाह ही की करनी चाहिए। यदि दूसरे की इताअत कर लेना भी बंदे को तौहीद के मुकाम से गिरा देता है। इसकी दलील सूरत नहल आयत 36, वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक्कत अलैहि दलाला। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा और उसके जरिए सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह ताला की इताअत करो और तागूत की इताअत से बचो। इसके बाद इनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर गुमराही साबित हो गई। और हदीस है तिर्मिजी में, अदी बिन खातिम इसके रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और मेरी गर्दन में सोने की सलीब थी, क्रॉस, क्योंकि ये पहले क्रिश्चियन थे। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद किया, ए अदी, इस बुत को उतार कर फेंक दो। यानी सलीब को अल्लाह के नबी ने बुत कहा। मैंने उस वक्त आपको सूरत बरात की आयत पढ़ते हुए सुना। उन्होंने कहा कि इन अहले किताब ने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। तब अदी के सवाल के जवाब में आपने इरशाद फरमाई कि वो अहले किताब अपने उलमा और दरवेशों की ज़ाहरी इबादत नहीं करते थे, यानी सजदा नहीं करते थे अपने उलमा को या रुकू भी नहीं करते थे, बल्कि जब उलमा किसी चीज़ को हलाल करार देते तो ये उसे हलाल जान लेते, और जब उलमा किसी चीज़ को हराम ठहराते तो वो भी इसको हराम जान लेते। और यही मतलब है उलमा को अल्लाह के सिवा रब बनाने का। आज हमारे दौर में तो नहीं है सौरा, बुज़ुर्गों के और उलमा के नाम पे हम कहते हैं कि ये हमारे आलिम साहब ने कह दिया है, आप कहते हैं इसकी दलील दिखाओ, कहते हैं दलील कोई नहीं, बस हमारे मुफ्ती साहब ने ये मसला बता दिया है। किसी के हराम को हलाल करना ये अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जमा किया कि तो हमारे सामने 11 पॉइंट्स यानी 11 पॉइंट्स बनते हैं कि जो तौहीद इबादत के बारे में शिरकिया उमूर में शामिल होते हैं हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, और फिर इन सब को अमली तौर पे देखेंगे ज़िंदगियों में कि कहाँ हम या हमारे साथियों में कोई दोस्तों में ऐसे काम तो नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई चीज़ मिले तो अल्लाह से फ़ौरन तौबा करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इन चीज़ों से निकाल दे और दूसरों को भी निकाल दे। पहली चीज़, अल्लाह ताला के सिवा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल के सामने बेहिसो हरकत बा अदब हाथ बांध कर खड़े होना शिर्क है। दूसरी बात, अल्लाह के सिवा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह के सामने रुकू की तरह झुकना या सजदा करना भी शिर्क है। यानी जैसे क्याम रोज़ शिर्क है, इसी तरह रुकू या सजदा भी शिर्क है। तीसरी बात, किसी मज़ार पर सवाब की नीयत से कम या ज़्यादा वक्त के लिए क्याम करना या मुजावर बनकर बैठना या तवाफ़ करना शिर्क है। चौथी बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह से दुआ मांगना या इन्हें दुआओं में वसीला बनाना शिर्क है। पांचवी बात है, मुसीबत या तकलीफ़ में अल्लाह के सिवा किसी जिंदा या फौत शुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अबदाल वगैरह को पुकारना, इनसे फरियाद करना, इनसे पनाह तलब करना शिर्क है। अगर वक्त होता ना तो मैं आपको यहाँ कुछ क्लिप सुनाती जिससे ये तो मुझे लगता कि इस महफिल की शान नहीं कि ऐसे शिरकिया जुमले हों, लेकिन चंद कवालियों के शेर, चंद नातों के शेर कि अल्लाह के नबी को तो पुकारते ही थे, अब उन्होंने बुजुर्गों को भी पुकारना शुरू कर दिया, और किसी को दस्तगीर और किसी को कुतब और किसी को कुछ कहा। छठा देखिए, अल्लाह तआला के अलावा किसी जिंदा या फौतशुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अब्दाल वगैरह के नाम का जानवर ज़िबह करना, या इनके नाम की नजरों न्याज देना, या मन्नत मानना, या चढ़ावा चढ़ाना शिर्क है। सातवां है, दुनिया या आखरत में नुकसान के डर से अल्लाह के मुकाबले में किसी फौतशुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अब्दाल वगैरह से डरना शिर्क है। आठवीं बात है, दुनिया या आखरत की कामयाबी के हसूल के लिए अल्लाह के मुकाबले में किसी फौतशुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अब्दाल वगैरह की रज़ा हासिल करना शिर्क है। अगली बात, अल्लाह के मुकाबले में किसी जिंदा या फौतशुदा नबी, वली, गौस, कुतुब या अब्दाल वगैरह से बढ़कर मोहब्बत करना शिर्क है, यानी अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत किसी और से। इसी तरह इन सब पर तवक्कुल करना भी शिर्क है, ये नंबर 10 है। और 11 क्या है कि अल्लाह ताला के मुकरर करदा हलाल व हराम के मुकाबले में किसी वली, गौस, कुतुब, अब्दाल या मुर्शिद या किसी मजहबी रहनुमा या सियासी लीडर या किसी पार्लियामेंट या किसी असम्बली व खाल वगैरह के मुतय्यन करदा हलाल और हराम पर अमल करना शिर्क है। तो ये थी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तौहीद फिल इबादा की। और कुछ ना समझ आया हो ना तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि शिर्क और तौहीद का दायरा कितना वसी है। हमने तो इसको एक लफ्ज़ से रखा हुआ था ना कि अल्लाह एक है, दैट्स इट, ये है, मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गए मुसलमान। नहीं, उसके तकाजे निभाने मुश्किल है। जैसे पीछे हमने ब्रांचेज ऑफ फेथ देखी थी, ईमान मतलब ईमान की जो शाखें थी, उसमें भी हमें अंदाज़ा हुआ था कि ईमान सिर्फ एक लिप सर्विस का नाम नहीं। इसी को अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि जुबान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें फिक्र लगनी है अपनी और अपने अकीदों को चेक करना है, क्योंकि हल्का सा शिर्क हमारी बहुत बड़ी बड़ी नेकियों को खा जाएगा।